अब चौथा पॉइंट क्या है, मुसीबत आ गई तो क्या करें, जिक्र इलाही, जिक्र कीजिए, फिक्र क्यों करते हैं हम, फिक्र में इतने मशगूल होते हैं जिक्र नहीं करते, दूसरों को ही अपना गम सुनाने में गला सूख जाता है। जिक्र शुरू कर दें, कभी इस्तग़फ़ार, कभी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों, अला बि ज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सूरत रात आयत 28 है कि खूब जान लो कि दिलों को सुकून अल्लाह की याद से मिलता है। जिक्र इलाही हमारे गमों को दूर करने वाली चीज़ है, फरिश्ते ढांप लेते हैं, अल्लाह की रहमत आ जाती है, इत्मीनान बंदे को मिलता है। इसको थोड़ा सा भी इमेजिन करें, किसी भी चीज़ का तذکرہ जब हम करते हैं तो उसका असर आता है दिल पे, बिल्कुल आता है। आप अपनी किसी ऐसी दोस्त के साथ बैठे हैं जो घबराती हैं, हर बात पे फिक्र है, हौलनाक है, ये ना करना उधर ये होगा, तुमने सुना, खबर सुनी, टीवी पे आया, आप आधा घंटा उनके साथ बैठ के उठे ना, आप भी आधे डाउन हुए होते हैं। आपको लगता है बस पाकिस्तान इंडिया पे हमला कर रहा है, इंडिया भी कर रहा है पाकिस्तान पे, इसराइल ने भी जंग लगा देनी है, अमेरिका ने भी करना है, बस सारी दुनिया खत्म होनी है। ज़रूरत क्या है, जिक्र, आओ बैठते हैं अल्लाह की बात करें। अच्छा जिक्र करना कैसे है, अल्लाहू 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 नहीं, जिक्र वैसे करो कमा अल्लमकुम, कुरान में आता है सूरह बकरा में ही हम पढ़ते हैं, वैसे अल्लाह का जिक्र करो जैसे अल्लाह ने सिखाया। नबी सल्लम की वफ़ात के कुछ अरसे के बाद हज़रत अली या इब्ने अब्बास, दोनों में किसी की बात है मेरे मुगालते में, बहरहाल कोई एक सहाबी थे, कोई एक उनके पास आके कहने लगा, आपको पता है मैंने मस्जिद में एक चीज़ देखी। कहा क्या देखा? कहा जब नमाज पढ़ते हैं ना, कुछ सब लोग चले जाते हैं तो कुछ लोग एक सर्कल बनाते हैं ऐसे सेमी सर्कल, तो फिर सारे मिलके ऊंची आवाज से अल्लाह 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 कुछ जिक्र करते हैं, हालांकि हमने तो ये नहीं देखा अल्लाह के नबी को करते हैं। कहा अच्छा, अगर कल भी यही करेंगे तो फिर बताना, यानी हो सकता है तुम्हें गलती लगी हो। 3 दिन तक वो देखते रहे कि लोगों ने ये आदत बनाई, उसके बाद वो सहाबी उस मस्जिद में गए, इतना दिल सोज बयान दिया, लोगों अभी तो नबी सल्लम के बर्तन भी नहीं टूटे, अभी तो आपकी अजवाजे मुतहरात भी जिंदा है, और तुमने दीन में मनमाने तरीके शुरू कर दिए। आज के बाद अगर तुम्हारी ये खबर मुझे मिली इस मस्जिद में, मैं तुम्हें मस्जिद में से निकलवा दूंगा। इतने सहाबा किराम स्टिक होते थे कुरान सुनने से कि मैंने इधर से उधर नहीं होना, जिक्र वैसे करो जैसे अल्लाह ने कहा। मैंने एक किताब में पढ़ा, ला इलाहा इल्ला अंता का वजीफा लिखा हुआ था, अंधेरे कमरे में जाएं, हाथ में प्याला रखें, प्याले के अंदर तस्बीह भिगोएं, फिर आंखें बंद करें, फिर खुद को मछली के पेट में सोचें, फिर ला इलाहा इल्ला इस तरह इतनी दफा पढ़ें। ये सिर्फ फन है, दिल की गहराई के साथ पढ़ें तो जिक्र करने के भी बड़े तरीके हैं। जिक्र इलाही बजाते खुद अपनी जगह एक बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे आप मजीद इल्म लें इंशाल्लाह। 15वीं चीज़ क्या है कि अल्लाह की नेमतों को याद रखें। मुसीबत जब आ गई तो क्या हुआ, नेमतें तो हैं ना, अल्लाह ने अभी बहुत कुछ दिया हुआ है। सूरत इब्राहिम 34 में आता है, वाताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमुहु, तुम्हें वो सब कुछ दिया जो तुम मांगते हो। वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनना चाहो, नेमते नहीं है, नेमत का लफ्ज है, एक नेमत को गिनना चाहो तो तुम उसको नहीं गिन सकते। इन्नल इंसान अल जलूम उन कफार, इंसान बड़ा ना शुक्र और जालिम है। सच है कि नहीं, हम तो सिर्फ नेमत इस्लाम का ही हक नहीं दे सकते, ईमान का हक अदा नहीं कर सकते। फिर नेमतों को याद रखने के नाते से वाकयात भी इन्होंने कुछ बयान किए। उरवा बिन जुबैर का एक किस्सा है, कहते हैं, यानी ये जो रावी हैं बयान करते हैं कि मेरा भाई मोहम्मद वलीद के अस्तबल की सबसे ऊंची सतह से नीचे गिरा तो वहां मौजूद चौपाइयों ने इसे अपने पांव तले रौंद कर कत्ल कर दिया। एक शख्स ताजियत की गरज से मेरे बाप उरवा के पास आया तो उन्होंने कहा, अगर आप मेरे कदम के काटे जाने की वजह से मेरे साथ ताजियत कर रहे हैं तो यकीनन मैं अल्लाह तआला से सवाब हासिल करने की नीयत से इस पर सब्र कर चुका हूँ। उसने अर्ज किया, बल्कि मैं तो आपके साथ हूँ और आपके बेटे मोहम्मद के बारे में ताजियत कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा, उससे क्या हुआ? तो उस शख्स ने सूरत हाल से इन्हें आगाह किया तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह, अब देखिए बेटे की मौत की खबर आ रही है, बाप क्या कहता है, अल्लाहुम्मा खज़्ता उज़्वन, अल्लाह तूने मेरा एक उज्व काट लिया, यानी टांग वापस ले ली, और मेरे लिए कितने अज़ा रहने दिए, यानी जब टांग कटने की खबर आई तो कहते क्या हुआ अल्लाह, एक टांग ली है, अभी तो मेरे जिस्म के सारे उस मौजूद हैं, और आपने एक बेटा लिया, और कितने बेटे मेरे पास हैं। कितनी पॉजिटिव सोच है, जो है उसकी फिक्र करो, जो चला गया वो तो है। और हम क्या करते हैं, एक किसी ने बताया कि एक थी कोई भी माँ, तो 4-6 बेटे थे, एक चला गया अल्लाह के हुक्म से। वो कहती है, हमारी माँ सारा दिन उसको रोती है और जो मौजूद बच्चे हैं उनकी कदर नहीं करती। तो ये एटीट्यूड दुरुस्त नहीं होता, अल्लाह ताला आपको मुझे ऐसी आजमाइशों में ना डाले, और अगर डाले तो फिर हम उस पर सब्र करें। फिर आगे 16वीं चीज है, सब लोगों के मुसीबतों में मुबतला होने को याद रखें। जब आप पे आई है तो सोचे दूसरों पे भी तो आई है, और यकीन करें जो चीज मैं फील करती हूँ अपने ऊपर जो आती है ना वो आसान लगती है। किसी दूसरे की सुन के बंदा कहता है ये बर्दाश्त कैसे कर रहा होगा, इसने इस चीज को अपने लिए बर्दाश्त कैसे कर दिया। बात समझ रहे हैं? यानी हम ऐसे मुश्किल वक्तों में अपने आप को बिल्कुल अल्लाह के सहारे पे डाल दें, फिर इंशाल्लाह ताला आपको फायदा होगा कि दूसरों को भी तो मुश्किलें आती हैं। आप जरा बैठ के ना अपने मिलने वालों को सोचें, फलां का बेटा हैंडीकैप है, फलां के शौहर जवानी में दुनिया से चले गए, फलां एक कमरे में चार बच्चों के साथ रहती है ना, हमारे सबके ऐसे लोग। फिर अपने ऊपर लें, मेरे में क्या खूबी है कि अल्लाह ने मुझे इन आजमाइशों में नहीं डाला दूसरों की मुश्किलें देखनी है। वो कहते हैं ना कि दूसरों के गम देखे तो अपने गम भूल गए, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो होश ना खोएं बल्कि अल्लाह से सब्र मांगें और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह ताला आप मेरे लिए आसानी फरमा दें। फिर इसमें कुछ अशआर भी हैं बड़े खूबसूरत, और कुछ वाक़यात हैं कि किस तरह ऐसे वक्तों में लोगों ने दूसरों की मुश्किलात को याद किया तो उनकी अपनी मुश्किलें कम हो गई। 17वीं चीज़, अपने से बड़ी और संगीन आजमाइशों में मुबतला लोगों को देखना। यानी उसी से मिलती हुई चीज़ है, थोड़ी सी बड़ी है कि आप ऐसे वक्त में ढूंढें। आपका तो एक बेटा गया, किसी के तो चार चले गए। आपको तो कई ऐसे हादसात होते हैं कि एक एक माँ के दो दो तीन तीन बच्चे इकट्ठे चले जाते हैं। अल्लाह ने मुझे उससे तो बचा के रखा है ना। तो हमेशा याद रखें, जीतते हैं परेशानियाँ आए तो अपने से दुखी लोगों को देखें, और जब दुनिया की बात आए तो क्या करेंगे आप, अपने से नीचे को देखेंगे। 18वां और नुक्ता है, हर तंगी के साथ अजीम आसानी होने की सुन्नत इलाहिया को याद रखें। वही काम जो मुसीबतों के आने से पहले था कि कोई बात नहीं, अब ये मुसीबत आ गई है तो इंशाल्लाह ये पलट जाएगी और अल्लाह ने चाहा तो मैं इसमें से बच जाऊंगा। और अल्लाह कहता है कि फ़इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। यहाँ लफ्ज मा पे गौर कीजिएगा, हम क्या कहते हैं फ़इन्ना बादल उसरी युसरा, बाद कहते चलो अभी तंगी आ गई है बाद में आसानी है, नहीं ये साथ साथ चलते हैं। माँ खुशी गम का वो ताल्लुक है जैसे बहार और खिजां, गर्मी और सर्दी, रात और दिन। तो आज आप एक तरफ से खुशी की खबर सुनते हैं, दूसरी तरफ से गम की सुन लेते हैं, ये चलता रहेगा जब तक कि हम इस दुनिया से नहीं जाते। हदीस में आता है कि एक मोमिन के ऊपर आजमाइशें आती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं, हद तक के उसको ऐसे पाक कर देती हैं कि उसके जिस्म पे एक गुना भी नहीं होगा और वो अपने अल्लाह से मुलाकात कर जाएगा इंशाल्लाह, और अल्लाह हमें माफ़ी कर दे। 19वीं बात क्या है मुसीबतों के आने के बाद करने वाली, नाउमीदी से दूर हो जाए, यास और नाउमीदी से पीछे हो जाए। क्योंकि नाउमीद कौन होते हैं, सूरत हिजर आयत 53-56 में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमई यक़नतु मिन रहमति रब्बिही इल्लद दालून, अल्लाह की रहमत से मायूस तो भटके हुए लोग होते हैं। बात समझ गए आप लोग? तो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना, इसमें वाकया किसका आप सुन सकते हैं कुरान में, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, या बनी यस्खबू फतहस्ससु मिन यूसुफ, खोया बिन्यामीन है और बेटों को करें जो यूसुफ को ढूंढो, वो तो इतने साल पहले खो गया था। तो याद रखिए जब मायूसी नहीं होती तो अल्लाह ताला आसानी करता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तीसरा बड़ा टॉपिक पूरा हुआ, 19 पॉइंट देखे हमने, मुसीबतें आ जाएं तो क्या करना है। यकीन करें अभी तो आपको ये लग रहा है ना बहुत कुछ है, आप इसमें से 1/10 भी अपने अंदर ले आए ना तो आप कहेंगे कि ये 5 दिन के या जितने भी दिन में ये कोर्स हो रहा है, इस सफर ने मेरी जिंदगी के सारे गम दूर कर दिए। सबक लेकर उठेंगे तो बात बनेगी। पहले क्या था, मुसीबतों के असबाब क्यों आती हैं, फिर क्या था, क्या करें कि मुसीबतें आई ना, फिर क्या पड़े, अब आ गई है, आई हुई है, सर पे पड़ी हुई है मुसीबत। अब आखिरी टॉपिक छोटा सा वो कि मुसीबत चली गई अब क्या करें, पार्टी, गुस्ले सेहत, वो क्या कहते हैं उसको, गेट टुगेदर रखेंगे, गम टल गया, बीमारी चली गई। बहुत दफ़ा, अब ये जुमला बड़ा अहम है क्योंकि अब ये आखिरी वर्ड्स हैं ना, तो ज़रा गौर से समझिएगा कि बहुत दफ़ा हम मुसीबतों के दौरान तक ठीक होते हैं, अल्लाह को हम पे प्यार आ रहा होता है कि फरिश्तों इसकी डाल दो ये अच्छा बंदा, बट जो ही मुसीबत टली रात गई बात गई, तू कौन और हम कौन। सबसे कड़ा इम्तिहान मुसीबतों के जाने के बाद है। क्या सीखा, देखिए ना, अब आप 5 दिन आते रहे, कल से आप कहते हैं छुट्टी। नहीं, क्या इस कोर्स का मकसद पूरा हुआ अगर आप 5 दिन जो बातें पढ़ी इस किताब को इधर ही छोड़ छाड़ के चले जाएं और खत्म? नहीं, आपके साथ क्या गया, आपने इससे सीखा क्या? मैंने एक जुमला पहले बोला था, उसी को यहां बढ़ा के इस मौजू पे थोड़ी सी बात करूंगी कि मुसीबत इंसान की उस्ताद बन जाती है। शर्त एक है कि आप उससे सबक सीखें। कुछ लोगों का हाल क्या है कि ना मुसीबत से सीखते हैं ना खुशी से सीखते हैं। हदीस है अल्लाह के नबी की, खुलासा बता देती हूँ। आपने फरमाया, मुनाफिक की मिसाल उस गधे की है कि जिसको नहीं पता कि मेरे ऊपर जो बोझ डाला है मेरे मालिक ने, वो मुझसे नाराज होकर डाला है या मुझसे खुश होकर डाला है। बस वो गधे की तरह, जैसे वो किताबों का बोझ उठा के फिरता है ना, सूरत जुमा में आता है कि जैसे गधे पे बोझ डाल दिया जाए, ऐसे कुछ लोगों ने इल्म का बोझ अपने कंधों पे सिर्फ डाला होता है। तो क्या करना है, मुसीबत चली गई, जहाँ देखिए 9 काम है, खुलासा देख लीजिए। तो ये वही बातें हैं जो गुजर चुकी हैं, लेकिन अब इसका एक सिनेरियो सा फर्क है आपका कि मुसीबत चली गई तो सबसे पहली बात क्या सोचिए, मुसीबत के बाद नेमत का बतौर आजमाइश मिलना एतकाद रखें। डिटेल्स हम पढ़ेंगे, मैं सिर्फ लिस्ट बोल दूं, फिर इस पे हल्का सा गोत्रू कराऊंगी आपको इंशाल्लाह। पहली चीज सोचे कि मुसीबत भी आजमाइश थी तो अब ये नेमत भी आजमाइश है। कितने लोग हैं जो नेमत को आजमाइश समझते हैं? मतलब कोई आपको बच्चा दे, बेटा पैदा हुआ आपका, और आप जाके के अल्लाह आपको इस आजमाइश में पूरा उतारे, क्योंकि क्या मतलब ये आजमाइश है जी, औलाद का होना बहुत बड़ी आजमाइश है। आप उसको करते क्या हैं? आपको अल्लाह ने बहुत बड़ा घर दिया, बहुत नेमत दी, आपकी दोस्त आए कहती हैं अच्छा भाई अल्लाह ही आपको इस आजमाइश में बुरा उतारे, तो हम तो उसे नाराज हो जाएंगे, कहेंगे मेरा इतना बड़ा घर दे के जल गई हो, ये कोई आजमाइश है? नहीं, आजमाइश है कि अब इस घर में आप रहते कैसे हैं, अल्लाह की नाराजगी है या रजामंदी है। तो याद रखिए, मुसीबत गई तो ज़ाहिर नेमत आ गई, तो सोचें कि ये नेमत एक आजमाइश है। दूसरा पॉइंट क्या है, मसाइब से निजात अता फरमाने पर अल्लाह की हम्द और शुक्र। अमूमन लोग क्या करने लग जाते हैं, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं फड़े मारने लग जाते हैं। देखा, आया था वक्त, हमने इतने अच्छे डॉक्टर को दिखाया, अमेरिका ले गए, मरीज ठीक हो गया। यानी अमेरिका में मौत नहीं होती, अमेरिका के जहाज में बैठ गए, मलकुल मौत के कब्जे से निकल गए। ये फड़े मारना, हमने 100 बकरा कुर्बान किया जी, देखो मुसीबत चली गई। नहीं, आई भी उसके हुक्म से थी, गई भी उसके हुक्म से। तीसरी चीज, अल्लाह ताला के दोबारा मसाइब में मुब्तला करने पर कादिर होने को पेश नजर रखना। बड़ी सोने के पानी से लिखने वाली बात है, एक गई है तो दोबारा भी तो आ सकती है। इस पे हमारी एक साथी है तो वो माशाल्लाह रिवर्ट है, सिख मजहब से है, कुछ साल पहले इस्लाम की तरफ इंक्लाइंड थी, फिर अल्लाह ने इस्लाम भी दे दिया, तो अब नॉर्वे में स्कूल में आती भी हैं, बच्चों में हेल्प भी करती हैं। तो वो अपना एक वाक्या सुना रही थी कि जहाज में वो बहन और माँ जो भी लोग रिश्तेदार थे वो तो अपने पुराने मजहब पे, ये इस्लाम पे। कहती हम किसी एक जगह से दूसरे मुल्क जा रहे थे तो एकदम जहाज बहुत कांपने लग गया, शेक हुआ और सारे कुछ करने लग गए। तो मैंने ऊंची से कहा कि अल्लाह माफ़ कर दे, मैं नफिल पढ़ूंगी। यानी उसने अल्लाह ताला से कुछ सदके की कुछ नियत कर ली, मन्नत मान ली कि मैं कर लूंगी। तो कहती कि खैर, वो अपने हिसाब से हाय गुरु गुरु राम कुछ कह रही थी, तो मैं अपने अल्लाह को पुकार रही थी। थोड़ी देर बाद अल्लाह के हुक्म से वो जहाज ठीक हो जाना था। तो कहती जब हम उतरे तो मेरी बहन कहती है हुने नफल पढ़ भी लई, असी वापस भी जाना है। समझ आई कि तेरे रब दी सानू फिर भी लोड़ पैनी, तो तू नफल पढ़ ली। तो जो एक दफा टली है वो वापस नहीं आ सकती। कैंसर के बारे में तो लोग कहते हैं ये पलट के आ जाता है। तो कभी भी नेमत पाकर चौड़े ना हो, याद रखिए दो इम्तिहान के पर्चे हैं, सबर और शुक्र। बनी इसराइल एक पूरी कौम, एक रवैया सूरह बकरा में अल्लाह ने बयान किया, आजमाइशें बीमारियां जो तकलीफें फिरौन का चुंगल और उसके जुल्म थे उसमें ये कामयाब हो गए थे। तभी तो अल्लाह ने मूसा को भेजा और अल्लाह ताला ने निजात दे दी, फन जई नकुम मिन आली फिरौन यसूमू नकुम सूल अज़ाब। लेकिन नेमतों के पर्चे में नाकाम हो गए, जब इनको गलबा मिला चौड़े हो गए। और अक्सर लोगों का यही हाल है वल्लाही, आप अफराद पे, मुल्कों पे, ऑर्गेनाइजेशन पे ये असूल फिट करके देख लीजिए। तकलीफ आती है, दुख आती है, हम सब एक होते हैं। जरा अपने पाकिस्तान को देखिए, जरा तकलीफ है हम सब पाकिस्तानी एक है। कहते हैं लोग पाकिस्तान के बारे में, जलजला आ जाए, तूफान आ जाए, जंग लग जाए, सब एक मुट्ठी में आ जाएंगे। और जरा सी आंखें खुलती हैं तो वो 100 टुकड़ों में बंटने को तैयार होते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि मुसीबत गई है तो वापस भी आ सकती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला के हजूर दुआ और गिरिया और जारी का जारी रखें, यानी जिन दुआओं और तहज्जुदों से ये मुसीबत टली है उसको ना छोड़ दें, वापस आ जाएगी। बाज़ दवाइयाँ हमेशा खानी पड़ती हैं, बाज़ मरीज़ होते कहते हैं अब ये सारी उम्र खानी है गोली, तो ये दुआ की और गिरिया की गोली हमेशा खानी है चाहे अल्लाह की तरफ से तकलीफ चली भी गई। फिर तस्बीह और तहमीद, अल्लाह की तस्बीह करते रहें, हम बयान करते रहें, फिर इस्तग़फ़ार करते रहें, फिर सबसे अहम बात इबादत में मेहनत करें। पहले बीमारी में परेशान थे, मुश्किल हालात थे, तो आप नहीं कर सके ना नेकी का काम या इबादत उतनी नहीं की, अब आसूदा है अब कीजिए। एक जुमला बोलती हूँ बड़े शौर से, जैम बना लें इस दिन का कि बाज़ दफ़ा आजमाइशों के पर्दे में हमारी मुनाफ़क़त छुप जाती है। पाबंदी लगा दी किसी ने, कोई नहीं जाना, बैठो घर, अब हम रो रहे हैं धो रहे हैं सब जा रहे हैं, मुझे नहीं आने दे रहे, पाबंदी लगाई, शुक्र कीजिए। अगर पाबंदी ना भी लगती जाना आपने कोई भी नहीं था। बात कितनों को समझ आ रही है? बस दफ़ा हमारे हालात ठीक नहीं होते, सूटेबल नहीं। मिसाल देती हूँ, हम यहाँ आ रहे हैं, ऐसी मिसाल दे रही हूँ, मैं तो आप में से बहुत सारों को जानती भी नहीं हूँ, आपको तो नाम शक्लों से जान रही हूँ, नाम नहीं याद, लेकिन इस शहर में कोई बुशरा हो सकती हैं, कोई रेहाना हो सकती हैं, कोई भी है, आपको वो नहीं दिखती। क्या वजह? आप कहते हैं बस उसका बच्चा बीमार है, परेशान है हॉस्पिटल में। हम सब पिटी फील करेंगे ना अपनी उस बहन, हम सारों उनके लिए जो नहीं आ सकी, आजमाइश आ गई, कल बच्चा ठीक भी हो गया उन्होंने फिर भी कोई नहीं था ना। बस दफ़ा, हर एक जगह नहीं मैं कह रही, यानी बस लोग जितनी आसूदगी ज़्यादा होती है ना उतने ढीले होते हैं। हम अपने साथियों में ऐसे लोगों को जानते हैं कि कई छुप के आते हैं घरों से, और कईयों के मियाँ कहते हैं जाओ पढ़ो सीखो, वो नहीं आती। फिर लोग मान करते हैं आपके तो शौहर ही बड़े आपके कोऑपरेटिव हैं, आपने दीन का काम क्यों नहीं करना? भाई दुआ करें शौहर कोऑपरेटिव हो फिर भी बंदा कर ले, जिसको नहीं करना उसको नहीं करना। सिस फिरौन का क्या नाम था? आसिया। आजमाइशों में भी कर गई, और लूत और नूह की बीवी जो नबी की बीवी थी नहीं कर सकी। तो मत सोचिए कि हमारे पर कोई आजमाइश नहीं आएगी तो हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, ये कहा करें अल्लाह हर हालात में करा। और मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ, बीमारियों में भी आते हैं, परेशानियों में आते हैं, घर वालों को नाराज करके भी आते हैं, कहते हैं हमने नहीं छोड़ना क्योंकि अल्लाह ने कह दिया। फिर आठवीं चीज़ क्या है कि रब्बे जुल जलाल की तरफ रग़बत करना, अपने रब से मज़ीद कुर पैदा करें और थैंक यू बोलें कि अल्लाह ताला आपने मेरी मदद की। दुनिया में आप देखें हम किसी मुश्किल में और कोई हमारी मदद करे और वो मुश्किल टल जाए, सच्ची बताएं क्या हमेशा याद नहीं रहता फलां ने उस वक्त मेरी मदद की, उसका मशवरा मानकर मैं उस मुश्किल से निकल आई, उसके पास चले गए तो मेरे मियाँ की जॉब बच गई, उसने हमारी ऐसी मदद की। करते हैं ना वकील लोगों को अच्छे लगते हैं, कहते हैं इस वकील साहब ने हमारा मुकदमा लड़ा, अल्लाह ने फतह दे दी, कामयाब कर दिया। तो आप और मैं किसकी तरफ झुकेंगे? अल्लाह की तरफ। और नौवीं और आखिरी चीज इसमें आएगी कि अल्लाह ताला के एहसान की मानित मखलूक पर एहसान करना, यानी जब अल्लाह आप पर एहसान करे ना तो आप अल्लाह के बंदों पर करें। वो एक शेर भी है ना, करो कुम तुम मेहरबानी अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। टूटे फूटे शेर हम सबको ही आते हैं, ये हमारे वो कल्चर के शेर है ना असल में। तो जितना अल्लाह के बंदों के साथ आप और मैं नरमी करेंगे, खूबसूरत मामला रखेंगे, आप देखेंगे कि उतना ही अल्लाह ताला की नेमतों का हक अदा होगा। तो ये 9 चीज़ें हमने करनी है मुसीबतों के आने के बाद। ऐसे लग रहा है कि मुसीबत पहले आई भी नहीं थी फिर भी यही कुछ था, आ गई तो भी यही कुछ था, तो चली भी जाएगी तो फिर भी यही कुछ है, क्योंकि यही असल है। देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा, सब्र, दुआ, जिक्र, थोड़े थोड़े फर्क के साथ पढ़ा ना। ये टाइटल कैसे बंधे हैं हदीसों में जो लफ्ज आए हैं, ये भी याद रखिए, ये जितने टाइटल्स हम पढ़ रहे हैं ना ये उस हदीस के अंदर जो अभी इस पूरे रेफरेंस में हम पढ़ते हैं। अब ये पूरा टॉपिक जो है ये पेज 463 से लेकर 524 तक है, तकरीबन 50 से ऊपर सफ़े हैं। इस सारे को अगर आप मैं एक एक लफ्ज़ भी पढ़ दूं और आपके साथ इसके रेफरेंसेस भी पढ़ दूं, नतीजा यही है जो हमने खस किया कि जब मुश्किल आए तो आप अल्लाह के साथ ताल्लुक ना छोड़ें, और मुश्किल चली भी जाए तो भी नहीं छोड़ना। ठीक है, समझ आ गई ये बात? वो कहते हैं ना कि बिगनिंग ऑफ एंड, कुरान कभी पूरा नहीं होता, दीन कभी पूरा नहीं होता, इसकी हद तो कोई नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम ये बुक पूरी करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे ये काम लिया और ये सब कुछ जो प्लान हुआ ना, मैं इसलिए चंद लफ्ज़ बोल रही हूँ कि आप भी देखें कि जब अल्लाह ने कोई काम लेना होता है, जो आपका फ्रांस का ये ट्रिप बना, तो ये बस वो, मैं ये तो नहीं कहती कि ये अनवांटेड चाइल्ड था, लेकिन ये अल्लाह की प्लानिंग थी और अल्लाह ने आपके नसीब में रखी। बहुत हेजिटेशन था कि छुट्टियाँ हैं और मौसम ऐसे हैं, लोग आए ना आए, बहरहाल होना था हो गया। अब क्या पढ़ाएं, इतने दिन आने, मैंने इनको समझाया कि रोज एक एक दर्स करेंगे ना तो लोग थक जाते हैं, इतने दिन है तो सीरीज करें, तो पढ़ाएं क्या, उसमें बहुत कुछ है। सबसे ज्यादा जो इंक्लाइनेशन था ना शुरू से ही, वो सहाबियात या अज़वाज मुतहरात में से किसी की हालात ज़िंदगी या कोई ऐसी बुक पढ़नी थी हमने, बट ना तो वो नॉर्वे में थी और आपके पास तो मैंने सुना इधर बुक्स मिलती कोई नहीं है। ये बुक हमारे उधर स्टॉक में सबसे ज़्यादा थी, और थोड़ी थोड़ी तो बहुत सारी थी लेकिन हमें अंदाज़ा था आप लोगों का, तो ये बुक अल्लाह ने चूज़ कराई। मैंने देखी, मैंने कहा ये तो कभी हो नहीं सकती, ये 4 दिन में तो मैं इतना बुकलेट पढ़ा सकती हूँ, सच्ची जो बात है, ये चंद सफ़ों का। फिर मैंने जब इस बुक के कॉन्टेक्ट देखे अंदर इसके, जो मतलब अंदर इसकी जो चीज़ें, तो मुझे लगा ये बहुत लोगों के फ़ायदे की ना अवामी बुक है, ना इसमें मसलक है, ना अकीदा, ना कुछ। बहरहाल अल्लाह का नाम लिया मैंने देखा, तो मुझे अंदाज़ा था कि मैं सिर्फ इसके हेडिंग्स शेयर करूँगी, रोज़ का एक एक टॉपिक बना के खुद बोलूँगी, लेकिन मैं अपने दिल के साथ आपको बताऊँ कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जिस अंदाज से आप लोग यहाँ बैठे हुए ना, उस हिसाब से यही बेहतरीन तरीका था इसको पढ़ने का। अगर मैं किताब से पढ़ने लग जाती, आप में से आधे सो जाते, बोझल हो जाती। लेकिन अब मैंने सोचा है कि अगर दोबारा इसको डिटेल से पढ़ना है तो मैं इसका लेसन प्लान बना के दूंगी इंशाल्लाह, कहीं भी नए जहां भी कहीं गए तो मैं भी इसको हम 2 वीक में करेंगे, मज़ीद थोड़े से सुकून से पढ़ेंगे। हद कोई नहीं है पढ़ने की, लेकिन मैं अल्लाह की बहुत मशहूर हूँ और सबसे ज़्यादा आप लोगों की। आप सब ने भी हमारी उम्मीद से ज़्यादा इस पर शौक़ ज़ाहिर किया है। मैं पूछती थी इनको, मैंने कहा ये दरसों में तो इतने लोग आते हैं, तो ये कोर्स वाले दिन कितनों ने आना है। मैं दबे दबे इनसे पूछती थी, किसी ने नाम लिखाया है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, और अल्लाह जानता मेरे जिम्मे 8, 10, 15, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचती थी 25 से 30 लोग होंगे आप, लेकिन आपके आने से पता चला है कि मुसीबतों से सारे ही तंग है। तो आप अपना फीडबैक लिख के दें कि आप ये मौजू सुनकर आए या वैसे ही इल्म का शौक आया, और सबसे बढ़ के ये मस्जिद वाले जिसने भी, देखिए मेरा ये ईमान है कि हमारा नसीब है ना जैसे जगहों का भी नसीब होता है। मैंने इस सारे ट्रिप में कितने दर्स किए हैं आपको, तो हमने हॉल्स में भी किए हैं, हमने घरों में भी किए हैं। मैं आपको ये ग्रेटिट्यूड दूंगी जितना मैंने ये मस्जिद के ये 5 दिनों को इंजॉय किया है, मैंने बड़े बड़े हॉल्स को भी नहीं किया। वहाँ तो प्रोटोकॉल में भी हम होते हैं, वहाँ माइक के मसले, कितना कुछ है, वो ठीक है, वो कभी कभार अच्छा है, लेकिन बहुत अल्लाह ताला जजाए खैर दे जिन्होंने इस काम में हिस्सा डाला, जिन्होंने इसकी इजाज़त ली। आप सबको अल्लाह ताला इसकी बेहतरीन जजा दें। जज़ाकल्लाह खैर। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि बिनेमतिही ततिम्मु सालिहात ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। रब्बि औज़िनी अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया वला वालिदैया व नअमल सालिहन तरदाहु। या अल्लाह हमारे कामों का इंजाम बखैर करना। या अल्लाह हम तेरे बंदे, तेरे कमज़ोर बंदे, तेरे आजिज़ बंदे, या अल्लाह हमारे हाथ में कुछ भी तो नहीं है, या अल्लाह हमें तनहा ना छोड़। या अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर कर। या अल्लाह परेशानियों को दूर फरमा, बीमारियों को दूर फरमा। या अल्लाह अफराद की परेशानियों को भी दूर कर और पूरी मिल्लत इस्लामिया पे अपना रहम फरमा। या अल्लाह हम किससे मांगे, या अल्लाह हमारा तो तेरे सिवा कोई है ही नहीं। या अल्लाह हम तेरा दर छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। या अल्लाह मेरी बहनों, मेरे भाई, मेरे सारे दीन के साथी, या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह हमें इन बातों पे अमल की तौफीक दे जो हमने इन दिनों में सीखी, और इसके बाद तो हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को दीन के लिए चुन ले। या अल्लाह उनको 5 वक्त का नमाजी बना दे। या अल्लाह उनके दिलों में ईमान और तकवा डाल दे। या अल्लाह इन बहनों के शौहरों को दीन दुनिया में इनका मुआविन बना दे। या अल्लाह जैसे दुनिया में तूने हमें इतनी खूबसूरत जिंदगियां दी हैं, या अल्लाह हमारी आखिरत भी अच्छी कर दे। या अल्लाह हमें जन्नत में किसी की महरूमी ना देना, किसी की जुदाई ना देना। या अल्लाह हमें सारे अपनों के साथ जन्नतों में जगह देना, اور یا اللہ جو کمی بیشی رہ گئی اس کو دور کروا دے، غلطیوں کی اصلاح فرما دے، اور یا اللہ جو مضمون ہم نے پڑھا، جنہوں نے بھی اس کو لکھا پڑھا مدد کی، یا اللہ ان کی بھی اس کوشش کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمیں ایسی علمی محفلوں کا شوق لگا دے، یا اللہ دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں علم کا مزہ چکھا، یا اللہ جس شوق اور تپاق سے، اختمام سے، تیاریوں سے ہم دوسرے کام کرتے رہے، یا اللہ اب ہمیں علم لینے والا بنا، سنجیدگی دے دے، یا اللہ ہمیں سنا سنایا دین نہیں لینا، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کی باتیں اپنی جیسے نہ سمجھ لوگوں سے دین نہیں لینا، یا اللہ ہمیں دین وہاں سے لینا ہے جہاں سے خالص ملے گا، اور یا اللہ جن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، جس نے اس پورے ٹرپ میں کوشش کی ایک لفظ سے بھی، اپنے حالات، واقعات، مجبوریوں کے ساتھ ساتھ جس کو جس حد تک کوئی لے سکا، یا اللہ اس کا قبول فرما، اور جو نہیں لے سکے یا اللہ ان کو تیرے نبی ہی کی حدیث کے مطابق ان کا نہ کرنے کے باوجود اس میں حصہ لکھ دے، کیونکہ عذر اور مجبوریوں نے ان کو روک دیا، اور یا اللہ جنہوں نے کچھ کیا ان کو فخر، ریا، دکھاوے سے بچا، یا اللہ ہمیں دنیا کی شہرت سے بچا، یا اللہ دنیا کی محبت سے بچا، لا تجل دنیا اکبر ہمنا، یا اللہ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا غم نہ بنا، یا اللہ ہماری ساری کوششوں کا حاصل یہ دنیا نہ ہو، یا اللہ ہمیں اس دین کے کام کے بدلے میں کوئی دنیا کی چیز نہ دلوا لوگوں سے، یا اللہ ہمیں تعریف کا، شکریہ کا ایک لفظ نہ بلوا، یا اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ عاجزی کے ساتھ ہم خود اس راستے پہ چلتے جائیں، کمی بیشی سے درگزر فرما، جو بیمار ہے ان کو صحت دے، ہمارے ماں باپ پہ رحمت فرما، جو بیمار ہے ان کو صحت دے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما، یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں پہ رحم فرما، ان کی پریشانیاں، مجبوریاں، بیماریاں، تکلیفیں دور فرما، یا اللہ ان کے بچوں اور ان کے گھر والوں پہ اپنا رحم فرما، یا اللہ ہمارا زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی ہو جائے، یا اللہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج اور عمرے ہمیں اس مقصد کی یاد دہانی کرائیں کہ ہم ایک بہترین نبی کی بہترین امت ہیں، ہم نے بہترین کام کر کے اس دنیا سے جانا ہے، یا اللہ ہمارے اخلاق اچھے کر دے، ہمارے دل بڑے کر دے، تفرقوں سے بچا، اختلافات سے بچا، یا اللہ اختلافی باتوں پہ ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ دوسرے کی بات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں تعصب میں نہ رکھنا، یا اللہ ہمیں جہالت کی موت نہ مارنا، یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے رہیں اور ہم باطل پہ ہو چکے ہوں، اللہم ارنا الحق کا حق کا ورزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ، اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا، پھر اس کو ماننے کی بھی توفیق دے، اور باطل کو باطل کر کے دکھا اور پھر اس سے رکنے کی بھی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے استادوں پہ اپنی رحمت فرما، یا اللہ ہمیں ان کی دعائیں لینے والا بنا، یا اللہ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، یا اللہ ہماری کمی کوتاہی پہ ان کو نہ پکڑ، یا اللہ ہمیں ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا، اور یا اللہ جو جہاں تیرا دین سیکھ رہے ہیں اور اس میں مدد کر رہے ہیں آن لائن پہ اور آن سائٹ پہ، تو ان کی مدد فرما، یا اللہ ناروے والوں کی بھی بہترین مدد فرما، ان کی کوششوں میں برکت دے، یا اللہ تمہارا ہاتھ پکڑ لے، یا اللہ ہمیں ہمارے نفس کے اور ہمارے اسباب کے حوالے نہ کرنا، یا اللہ ساتھیوں میں ایمان، تقویٰ، محبت، اعتماد اور یا اللہ خوشی دے تاکہ دین کی برکت کو حاصل کر سکیں، اور یہی دعائیں سب جگہ والوں کے لیے لگا دے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و تب علینا انک انت التواب الرحیم، و صلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.